हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 18, 19, 20 और 21। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वतां विदुरकाष्ठाय मुहुर्कुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशये नराधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरंस्यते नमः। यः कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात हूण द्रकुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवनांख सादया येने च पापा यदपाशयाशया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्राप् दुर्बुद्धिलास्यत समीरिषीणां ऋषभ प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभु निर्मायशीति यदमूषु पुरुष भुङ्क्ते गुणांशो दशषोडशात्मका सोलङ्कृशिश्च भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 18। इस अध्याय में महाराजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं और ये वो सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आगे श्रीमद् भागवतम में कंटिन्यूस इन प्रश्नों के उत्तर ही आते जाएंगे। तो अब तक तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा था कि जब एक भौतिक देह जो है वो आध्यात्म आत्मा से भिन्न है, अलग है, तो उसे आत्मा को क्या अकस्मात ही ऑटोमेटिकली दूसरा देह मिल जाता है या उसके लिए कोई कारण होता है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि भगवान जिनके उदर से एक कमलदान निकलती है और ब्रह्मा जी उस पर आसीत होते हैं, तो उनका शरीर इतना विशाल होता है और सामान्य जीवों को भी अपने कर्मों के अनुसार कभी बड़ा शरीर मिलता है, कभी हाथी का मिलता है, कभी चींटी का मिलता है। मुझे ये बताइए कि भगवान के शरीर और जीवों के शरीर में क्या विशेष अंतर है? उस भगवान के शरीर को आध्यात्मिक और हमारे शरीर को भौतिक क्यों कहा जाता है? और फिर उन्होंने ये पूछा कि मुझे उन भगवान के बारे में बताइए जो परमात्मा के स्वरूप में प्रत्येक जीव के हृदय में है। हर एक जीव के हृदय में रहते हैं लेकिन फिर भी उनकी बहिरंगा शक्ति का स्पर्श नहीं करते। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न ब्रह्मांडों में जिस तरह से जिन जिन जीव का जन्म होता है, उत्पत्ति होती है, उन ब्रह्मांडों के विषय में पूछा, किस किस कार्य का क्या प्रतिक्रिया निकलती है, किस कार्य का क्या परिणाम निकलता, कर्मों के अनुसार क्या होता है, उसके विषय में पूछा, और के युगों की जो अवधि है उसके विषय में, और भगवान किन किन युगों में किस तरह से कौन कौन से अवतार लेते हैं, कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, उनके विषय में पूछा। आज श्लोक नंबर 18 में परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि जब किसी जीव को मनुष्य का देह प्राप्त होता है तो उस मनुष्य के देह में जीव के क्या विशेष कर्तव्य हैं? मनुष्य जीवन को इतनी महानता है तो उसकी क्या विशेष कर्तव्य है? और उसके साथ साथ ये भी बताइए कि विपत्ति ग्रस्त मनुष्य, जब उसके ऊपर विपत्ति आती है तो उस समय उसका क्या धर्म है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। वे कहते हैं, निर्णाम साधारणो धर्म सविशेष यादृश श्रेणीणाम राजश्रीणाम स धर्म कृच्छेषु जीवताम। निर्णाम साधारणो धर्म सविशेषस्य यादृशः श्रेणीणां राजश्रेणां च धर्मकृच्छेषु जीवताम्। नृणां साधारणो धर्म सविशेषस्य यादृशः श्रेणीणां राजश्रेणां च धर्मकृच्छेषु जीवताम्। नृणां यानी मानव समझ का, जो मानव है उनका साधारण धर्म, उनका साधारण या सामान्य धर्म संपर्क सूत्र क्या है? सविशेषस्य यादृश, सविशेष और विशिष्ट स्थिति में भी यादृश वे जिस प्रकार से हैं। श्रेणीनाम मतलब तीनों वर्णों के, राजर्षिणाम मतलब राजर्षि के, च भी धर्म धर्म, कृच्छेषु दुखी अवस्था में जो विपत्ति काल है, जीवताम उन जीवों का साधारण समय में क्या कर्तव्य है, विशेष समय में क्या कर्तव्य है, विपत्ति के समय उनका क्या कर्तव्य है, और जो तीनों वर्ण हैं और राजर्षि हैं उनके जो जो कर्तव्य हैं उनके विषय में बताइए। अनुवाद देखिए, कृपा करके यह भी बताइए कि मानव समाज के सामान्य धार्मिक संपर्क सूत्र क्या है, धर्म में उनके विशिष्ट कर्तव्य क्या हैं, सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासनिकीय राजकीय व्यवस्था का वर्गीकरण तथा विपत्ति ग्रस्त मनुष्य का धर्म क्या है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि मनुष्य की सभी श्रेणियों का, चाहे वे कोई या कुछ भी हो, सामान्य धर्म भक्तिमय सेवा है। उत्तर तो जब सुखदेव गोस्वामी तब देंगे, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने आज ही बता दिया कि जीव आत्मा का वास्तविक धर्म क्या है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतुर भक्ति अदुष्यते, भक्तिमय सेवा। यहाँ तक कि भगवत भक्ति में पशुओं को भी सम्मिलित किया जा सकता है, और इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण भगवान श्री राम के भक्त बजरंगबली या हनुमान जी द्वारा प्रस्तुत हुआ है। हम पहले ही कह चुके हैं कि यदि भगवान के असली भक्त का पथ प्रदर्शन प्राप्त हो तो आदिवासी या मानव भक्षी लोग भी भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। स्कंद पुराण में एक कथा है कि एक बहेलिया श्री नारद मुनि के प्रभाव से किस प्रकार से भगवान का भक्त बना। अतः भगवत भक्ति प्रत्येक जीव द्वारा समान रूप से भोग्य है। बहुत ही सुंदर यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीव आत्मा का एक ही धर्म है, और वो भगवान की भक्ति। उसके लिए उसके अंदर कोई योग्यता होनी अनिवार्य नहीं है कि भाई भक्त बनना है तो आपको मनुष्य ही बनना पड़ेगा, भक्त बनना है तो आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा, भक्त बनना है तो आपको बहुत ही ना क्लेवर होना पड़ेगा, ज्ञानी होना पड़ेगा। बुद्ध नहीं, भक्त के लिए कुछ क्वालिटी नहीं है। भक्त बनने के बाद क्वालिटी डेवलप होगी वो एक अलग बात है, लेकिन भक्त आप किसी भी कंडीशन में बन सकते हो। बहेलिया जो शिकारी था, जो जानवरों को मार मार के अपना पेट पालता था, इतना क्रूर था, फिर भी सिर्फ और सिर्फ एक शुद्ध भक्त की संगति से वो परमहंस बन गया, है ना। और यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्त बनने के लिए मनुष्य होना भी जरूरी है। यहाँ जरूरी नहीं है, यहाँ पर तो सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज क्या पूछे, निर्णाम मतलब मानव समाज में। लेकिन जीव आत्मा का धर्म पहले पता होना चाहिए। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, आप किसी भी शरीर में हो आप भगवान की भक्ति कर सकते हो। भगवान कभी नहीं कहेंगे कि गजेंद्र तो हाथी है, राजा बनाया था इंद्रद्युम्न और कर्मों के अनुसार हाथी बन गया, अब तो ये भक्ति नहीं कर सकेगा। नहीं, वो भक्ति कर सकता है। और भक्ति की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि वो कभी नाश नहीं होती है, वो कभी जीरो पे नहीं जाती है, वो हमेशा वर्तमान रहती है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, हर क्षण भक्ति बढ़ती जाती है, भक्ति बढ़ती जाती है। इसलिए हमें भक्ति के अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि ये भक्ति जो है वो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। हम भले अपने दुष्कर्मों के कारण अपने सारी योग्यताओं को खो बैठे, मनुष्य से जानवर भी बन जाए, लेकिन भक्ति सदैव हमारे साथ रहेगी। इसी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः भगवत भक्ति प्रत्येक जीव द्वारा समान रूप से भोग्य है। हर कोई उसका भोग कर सकता है, हर कोई भक्ति कर सकता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, विभिन्न देशों में विभिन्न सांस्कृतिक परिस्थितियों में जो धार्मिक लगाव होता है वह स्पष्ट मानव का सामान्य धर्म नहीं होता है, अपितु मूल सिद्धांत भक्तिमय सेवा है। अब यहाँ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो सांस्कृतिक परिस्थिति है, परिस्थितियां जो हैं वो बस धार्मिक लगाव होता है कि भाई यहाँ पर इस देवता की सेवा होती है, ये देवता। मानव का सामान्य धर्म ये नहीं है। वो जो सामान्य धर्म यहाँ पूछा गया, निर्णाम साधारण धर्म, सामान्य धर्म तो भगवान की भक्ति है। वह स्पष्ट मानव का मूलतः सिद्धांत भक्तिमय सेवा। यदि कोई धर्म परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं भी करता है, तो भी किसी विशेष नेता द्वारा निर्दिष्ट अनुशासनिक नियमों का पालन करना होता है। धार्मिक संप्रदाय का ऐसा नेता कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, क्योंकि ऐसा नेता अपने पद पर किसी तपस्या के माध्यम से आता है, किंतु नेता बनने के लिए भगवान को ऐसे अनुशासित कार्य नहीं करने पड़ते जैसा कि हम भगवान श्री कृष्ण के क्रिया कार्यकलापों में देखते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो भगवान है सोई भगवान है, और जीव का कर्तव्य उसी भगवान की सेवा करना। अगर वो भगवान की सेवा नहीं करता है तो फिर उसे किसी साधारण जीव की सेवा करनी पड़ती है। या तो जीव भगवान की सेवा करेगा या माया की सेवा करेगा। और वो जो सामान्य जिसकी आप सेवा करते हो उसके अंदर कोई विशेषता थी नहीं, बल्कि वो उस पद पर किसी तपस्या के माध्यम से आता है। और भगवान जो है, श्री कृष्ण जो है, वो तो स्वयं भगवान है। उनको भगवान बनने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता, वो भगवान है। इसलिए जीव आत्मा का कर्तव्य क्या है, उन्हीं भगवान की शरण में जाए। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, समाज की जातियों तथा आश्रमों के कर्तव्य जीविका के नियमों पर आधारित होते हैं, भक्ति सिद्धांतों पर भी निर्भर करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के फल को भगवान की भक्ति में अर्पित करने मात्र से जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता 12.10 में भगवान कहते हैं, अभ्यासे प्यसमर्थोसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अगर तुम भक्ति में सेवा का अभ्यास नहीं कर सकते तो अपने कर्मों को मेरे समर्पित कर दो, और इस तरह से कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो यही बात यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मनुष्य अपने कर्मों के फल को भगवान की भक्ति में अर्पित करके करने मात्र से जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान की भक्ति करने वाला कभी कष्ट नहीं भोगता, अतः आपत धर्म का कोई प्रश्न नहीं उठता, जैसा कि परम अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा इस ग्रंथ में बताया जाएगा। भगवत भक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य धर्म नहीं है, भले ही वह विभिन्न रूपों में प्रकट क्यों न हो। अब यहाँ पर ये सवाल का जवाब श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रीति से दे दिया है कि भगवान जीव का एकमात्र धर्म यही है कि वो भगवान की भक्ति करे, और इसी के लिए जीव बना है। अगर वो जीव भगवान की भक्ति नहीं करता है तो ही उसको बार बार संसार में आना पड़ता है, और अगर वो भगवान की भक्ति कर नहीं रहा है तभी वो फेल हो रहा है बार बार, यानी कि बार बार उसको वही संसार में आना पड़ रहा है और आगे परम धाम तक उन्नति नहीं कर रहा है, तो इतने से वो बार बार फेल हो रहा है। और यदि जीवन की सिद्धि चाहिए, अपना धर्म अपना कर्तव्य पूरा करना, तो वो सिर्फ एक ही है कि हम भगवान की भक्ति करें। और यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न पूछा है कि भाई विपत्ति के समय क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो श्रीला प्रभुपाद जी उसका भी उत्तर दे रहे हैं कि विपत्ति कैसी, जब जीव भगवान की भक्ति करता है और भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान की भक्ति करने वाला कभी भी कष्ट नहीं भोगेगा, आपत धर्म का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जीव यदि अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है तो उसको कभी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। भगवान ने कहा है योगक्षेमम वहाम्यम, तुम्हारा काम क्या है, अनन्या चिंतयन्तो माम, तुम्हारा काम है कंटिन्यूस मेरा चिंतन करो, मेरा नाम लो, मेरी मुझसे प्रेम करो, मेरी भक्ति करो। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तुम्हें जो वस्तु की इच्छा होगी, जो वस्तु की तुम्हारी जरूरत होगी, योग और क्षेम, जिस वस्तु की तुम सुरक्षा करना चाहोगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। और जब भगवान ने जिम्मेदारी ले ली तो आपत्कालीन धर्म का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आगे परीक्षित महाराज पूछते हैं, तत्वानं परिसंख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणं पुरुषाराधन विद्धि योगस्याध्यात्मिकस्य च तत्वानं परिसंख्यानम् लक्षणम् हेतु लक्षणम् पुरुषाराधन विद्धि योगस्याध्यात्मिकस्य च तत्वानाम् परिसंख्यानम्। तत्व जो सृष्टि के निर्मित करने के वाले जो तत्व हैं, जो मूल तत्व पंच महाभूत इत्यादि, उनके विषय में परिसंख्यानम्, उनकी कितनी संख्या मतलब उनकी कितनी क्वांटिटी है उसके विषय में। लक्षणम यानी उसके लक्ष्य, हेतु लक्षण मतलब कारणों के लक्ष्य, और पुरुष आराधना, पुरुष मना भगवान की आराधना मना भक्ति का, भगवान की भक्ति की विधि, उसकी भक्ति के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, योगस्य योग पद्धति का, योगस्य आध्यात्मिकस्य च भक्ति तक पहुंचने वाली आध्यात्मिक विधियां क्या हैं। एक तो भक्ति की विधियां क्या हैं, योग की विधियां क्या हैं, और भक्ति तक पहुंचने की आध्यात्मिक विधियां उनके विषय में बताओ, और जितने तत्व हैं उनके विषय में। अनुवाद देखिए, कृपा करके सृष्टि के तत्व मूलक सिद्धांतों, इन सिद्धांतों की संख्या, उनके कारणों तथा उनके विकास, और इनके साथ साथ भक्ति की विधि तथा योग शक्तियों की विधि का के विषय में भी मुझे समझाइए। आगे परीक्षित महाराज योगियों के विषय में पूछ रहे हैं, योगियों की गति के विषय में, और इतिहास और पुराणों में जो इनके साहित्यों में जो मूलभूत ज्ञान है उसके विषय में पूछ रहे हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं, योगेश्वरेश्वर वर्य गति लिंग भंगस्तु योगिनां वेदोपवेद धर्माणां इतिहास पुराणयो। योगेश्वरेश्वर्य गति लिंग भंगस्तु योगिनां वेदोपवेद धर्माणां इतिहास पुराणयो। योगेश्वरेश्वर्य गति लिंग भंगस्तु योगिनां वेदोपवेद धर्माणां इतिहास पुराणयो। योगेश्वर अर्थात योग, योग के जो ईश्वर हैं, योग के स्वामी हैं, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य गति, गति मना प्रगति, लिंग मतलब सूक्ष्म शरीर, भंग मतलब विरक्ति, तू लेकिन योगी नाम योगियों का, और वेदोपवेद धर्माणाम वेद मतलब दिव्य ज्ञान, उपवेद मतलब वेदों का अप्रत्यक्ष ज्ञान, और धर्माणाम मतलब धर्म शास्त्रों का, इतिहास मतलब इतिहास, और पुराण यानी पुराणों का। अनुवाद देखिए, महान योगियों के ऐश्वर्य क्या है और उनकी परम गति क्या है, पूर्ण योगी किस प्रकार सूक्ष्म शरीर से विरक्त होता है, इतिहास की शाखाओं तथा पूरक पुराणों समेत वैदिक साहित्य का मूलभूत ज्ञान क्या है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, योगेश्वर 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, जिनमें परमाणु से भी सूक्ष्म बनना या पंख से भी हल्का होना, इच्छानुसार वस्तु को प्राप्त करना, और जहां भी इच्छा हो चले जाना, आकाश में किसी लोक का निर्माण करना इत्यादि कृत्य सम्मिलित है। ऐसे अनेक योगेश्वर हैं जो ऐसी भिन्न भिन्न सिद्धियों में दक्ष हैं, किंतु इनमें से सर्वश्रेष्ठ है शिवजी। शिवजी सर्वश्रेष्ठ योगी हैं और सामान्य जीवों से कहीं बढ़कर अद्भुत कार्य करने वाले हैं। भगवत भक्त योग शक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास नहीं करते, किंतु भगवत कृपा से वे दुर्वासा मुनि जैसे महान योगेश्वर को भी परास्त कर सकते हैं, जो महाराजा अमरीश से झगड़ा मोल लेकर उन्हें अपनी योग शक्ति की अद्भुत उपलब्धियां दिखाना चाहता था। महाराजा अमरीश भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतः भगवान ने अमरीश महाराज द्वारा किसी प्रयास के बिना ही उन्हें योगेश्वर दुर्वासा मुनि के रोष से बचा लिया था और मुनि को राजा से क्षमा मांगनी पड़ी थी। इसी प्रकार जब द्रौपदी को कुरु लोग मिलकर भरी सभा में नग्न करके देखना चाह रहे थे तो भगवान ने इस संकट की घड़ी में अशेष साड़ी प्रदान करके रक्षा की थी और द्रौपदी को तो किसी योग शक्ति का ज्ञान भी नहीं था। अतः भगवान की असीम शक्ति के बल पर भक्त भी योगेश्वर होते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार बालक अपने माता पिता की शक्ति से शक्तिशाली बनता है, वे किसी कृत्रिम उपाय से अपनी रक्षा नहीं करते किंतु माता पिता के अनुग्रह से बच जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत बहुत सुंदर एग्जांपल दे रहे हैं योगेश्वर बनने का। योगेश्वर मतलब जितने भी योग शक्ति हैं उनका ईश्वर। तो वैसे तो साधारणतया योगेश्वर बनने के लिए योगियों को बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है और उसके बाद वो अणिमा लघिमा यानी बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही भारी, बहुत पंख की तरह हल्का होना और इच्छित वस्तुओं को प्राप्त, उसके लिए योगियों को बहुत तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है ऐसे योगियों को भी परास्त कर देता है क्योंकि उसके पास भगवान की शक्ति होती है। भगवान को योगेश्वर कहा जाता है, वही समस्त योगियों का ईश्वर है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके अंदर भी ये सारी क्वालिटीज जो है वो खुद ब खुद उसके अंदर आ जाती हैं। भगवान के भक्त जो हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सुंदर एग्जांपल यहाँ श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं अम्बरीश महाराज की। अम्बरीश महाराज ने कोई योग सिद्धि के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया था, जबकि दुर्वासा मुनि बहुत बड़े योगेश्वर थे। लेकिन फिर भी जब उन्होंने अम्बरीश महाराज का अपमान किया तो सुदर्शन चक्र ने आकर उसकी रक्षा की और तीनों लोकों में घुमाने के बाद जब दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज से क्षमा याचना की तब कहीं जाकर वो सुदर्शन चक्र की के प्रहार से बच सके। तो इसका मतलब ये है कि योग शक्ति प्राप्त करने के लिए जीव को उद्यम नहीं करना चाहिए। जब भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान की भक्ति के साथ हमारे अंदर बाकी सारी क्वालिटीज खुद ब खुद निर्माण हो जाएंगी। यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचना सर्वै गुणस्तत्र समासते सुरा। जो भगवान की थोड़ी भक्ति करता है उसके अंदर वो सारे गुण आ जाते हैं जो देवताओं के अंदर होते हैं। आदि श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित ने ब्राह्मण श्री सुखदेव गोस्वामी से ऐसे महान योगियों के परम गंतव्य के विषय में अथवा वे जिस प्रकार अपने प्रयासों से या भगवत कृपा से ऐसी अद्वितीय शक्ति प्राप्त करते हैं उसके विषय में भी प्रश्न किए। उन्होंने सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक शरीर से उनकी विरक्ति के विषय में भी प्रश्न किया। उन्होंने वैदिक ज्ञान के सार के विषय में भी जिज्ञासा प्रकट की, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 15.15 में बताया गया वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो। तो समस्त वेदों का सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को जानना है और इस प्रकार भगवान का दिव्य रूप प्रिय दास बनना है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी पहले से बता रहे हैं कि जितने भी वेद हैं उनका मकसद क्या है, भगवान श्री कृष्ण को जानना। और श्री कृष्ण को कैसे जानेंगे, जब हम श्रीमद् भागवतम को हृदय से पढ़ेंगे, उसको श्रवण करेंगे तो हम सारे वेदों के सारे ज्ञान को प्राप्त कर देंगे। और जितने भी क्वालिटीज हैं योगियों के अंदर, बड़े बड़े ज्ञानियों के अंदर, वो सारी क्वालिटीज स्वतः आ जाएंगी। इसलिए हमको हृदय से श्रीमद् भागवतम महापुराण को सुनने के लिए उत्साहित होना चाहिए। आगे परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं कि मुझे बताइए कि जितने भी जीव हैं संसार में उनका उनकी उत्पत्ति, उनका पालन, उनका संहार कैसे होता है। और आप कहते हो कि भगवान की भक्ति जीव का एकमात्र धर्म है, तो उस भक्ति का लाभ क्या होता है, क्या भक्ति करने से कोई हानि भी होती है, ये सब भी समझाइए। और वैदिक अनुष्ठान तथा उपवैदिक धार्मिक कृतियों के आदेश क्या क्या हैं, धर्म अर्थ और काम के साधनों की विधियां, ये सब मुझे डिटेल से बताइए। श्लोक ये कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सॉरी परीक्षित नारद अभी प्रश्न पूछ रहे हैं, श्लोक नंबर 21 में कहते हैं, संप्लवः सर्वभूतानां विक्रम प्रतिसंक्रम इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः। संप्लवः सर्वभूतानां विक्रम प्रतिसंक्रम इष्टापूर्तस्य सकाम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधि। संप्लव सर्वभूतानां विक्रम प्रतिसंक्रम इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधि। इन शब्दों का अर्थ देखिए, संप्लव सर्वभूतानां, संप्लव मतलब पूर्ण विनाश, सम्यक साधन, सर्वभूतानां यानी समस्त जीवों का, समस्त जीवों का संप्लव मतलब उत्पत्ति पालन और उनका विनाश। विक्रम विशिष्ट शक्ति या स्थिति, प्रतिसंक्रम अर्थात चरम विनाश उनका कैसे होता, इष्टा वैदिक अनुष्ठानों का संपन्न किया जाता है, कर्तव्य पूर्तस्य का मतलब है धर्म के पवित्र कार्य, और काम्यानाम यानी आर्थिक विकास के हेतु अनुष्ठान, त्रिवर्गस्य यानी धर्म अर्थ तथा काम के तीन साधन, च यह ये भी विधि, उनकी जो विधियां हैं वो भी बताइए। अनुवाद देखिए, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि कृपा करके मुझे बताइए कि जीवों की उत्पत्ति पालन और उनका संहार किस प्रकार होता है, और भगवान की भक्ति में सेवा करने से जो लाभ तथा हानियां होती हैं उन्हें भी समझाइए। वैदिक अनुष्ठान तथा उपवैदिक धार्मिक कृत्यों के आदेश क्या है, धर्म अर्थ तथा काम के साधनों की विधियां क्या है। तो ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है, श्री प्रभुपाद जी उसको बहुत सुंदर समझाएंगे। तात्पर्य श्री प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद की जय। संप्लव सर्वभूतानां, संप्लव श्री प्रभुपाद जी कहते हैं सम्यक साधन के अर्थ में भक्ति करने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी पूर्ण संप्लव मतलब सम्यक साधन के कंप्लीट साधन क्या है, और ये सम्यक साधन के अर्थ में भक्ति करने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि प्रतिसंप्लव इसके बिल्कुल विपरीत है, और भक्ति की प्रगति को विनष्ट करने वाले का द्योतक है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में सेवा में दृढ़ता पूर्वक स्थित है वह सरलता पूर्वक भद्र जीवन बिता सकता है। भद्र जीवन बिताना समुद्र के बीच में नाव के खेने जैसा है, इसमें मनुष्य को समुद्र की कृपा पर आश्रित रहना पड़ता है, क्योंकि किसी भी क्षण थोड़े से विक्षोभ से नाव डूब सकती है। हाँ, यदि मौसम अच्छा रहा तो निसंदेह नाव सरलता से चलती रहती है, किंतु यदि थोड़ा भी तूफान, कुहारा, झंझा या बादल रहा तो नाव किसी भी क्षण डूब सकती है। कोई कितना ही साधन संपन्न क्यों न हो, वह समुद्र की तरंग को नियंत्रित नहीं कर सकता। जिन्होंने जलयानों के द्वारा समुद्र पार किया है उन्हें समुद्र की कृपा पर निर्भर करने का पर्याप्त अनुभव होगा, किंतु भगवत भक्त से भावसागर को बिना झंझा या कुहर के भय से सरलता से पार किया जा सकता है, यह सब भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि बद्ध जीवन में कोई दुर्भाग्यपूर्ण खतरा उत्पन्न हो जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, किंतु भगवान के भक्त भाव सागर को चिंता रहित होकर पार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान उनकी सदैव रक्षा करते हैं। बहुत ही सुंदर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस बद्ध जीवन में जीना ऐसा है जैसे आप समुद्र में एक नाव में तैर रहे हो, है ना। ये संसार तो भाव सागर है और नाव में जो तैरता है उसे पूरा का पूरा मौसम पर निर्भर रहना पड़े। वो कितना एक्सपर्ट है, यदि वो नाव में बैठा हुआ है और तूफान आ जाता है, कुहर आ जाता है और ना बादल बरसने लगते हैं या झंझावात उत्पन्न होने लगता है, तो फिर उसकी नाव विपरीत दिशा की ओर चली जाएगी और वो डूब सकता है ना। तूफान में नाव जो है जब समुद्र में होती है तो पूरा का पूरा मौसम पर निर्भर रहना पड़ता। उसी तरह से हम भद्र जीवन में इस मनुष्य रूपी कश्ती में भाव सागर में तैर रहे हैं। भाव सागर में हम मनुष्य रूपी ये निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, जो दूसरे देहों में प्राप्त होना बहुत कठिन है वो इस मनुष्य देह में बहुत आसानी से सुलभता से प्राप्त हो जाता है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए मौसम अच्छा होना चाहिए। और मौसम किसकी कृपा से अच्छा होता है, भगवत कृपा से अच्छा होता है। बद्ध जीवन में आप अपने प्रयासों पर निर्भर रहते हो, लेकिन प्रयास तो कभी भी सफल नहीं होता। तेरा अगर कोई कितना ही सक्षम स्विमर हो, लेकिन यदि वो समुद्र में तैर रहा है और तूफान आ जाता है तो उसका डूबना तो जरूर अनिवार्य है, लेकिन यदि उसकी सहायता साक्षात भगवान कर रहा है ना, क्योंकि जो भक्ति करता है, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं, यदि बद्ध जीवन में कोई दुर्भाग्य खतरा उत्पन्न हो जाए तो कुछ भी नहीं कर सकता, किंतु भगवान के भक्त भाव सागर को चिंता रहित होकर पार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान उनकी सहायता करता। भगवान श्रीमद भगवद गीता 9.13 में कहते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता। जो महात्मा है अर्थात भजन्त्यत्य, महात्मा के विषय में भगवान कहते हैं भजन्त्यंत मन अनन्य मनसो, जो अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं, मेरा सुमिरन करते हैं, मेरे पवित्र नाम का जप करते हैं, मेरी कथाओं को भजन करते हैं, मेरा भगवान कहते हैं भजन्त्यंत अनन्य मनसो, उनकी सुरक्षा मैं स्वयं करता हूँ। दैवीं प्रकृति माश्रिता, वो मेरी दिव्य प्रकृति के अंदर आश्रित होते हैं। भगवान अपने भक्तों के भौतिक बद्ध जीवन के कार्यकलापों की ओर विशेष ध्यान देते हैं। भगवान बद्ध जीवन के कार्यकलापों की ओर विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता 9.29 में भगवान ने क्या कहा, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्तु न प्रियः, मैं तो सबके साथ समान हूँ, कोई मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ और ना ही किसी का पक्षपात करता हूँ। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं, ये भजन्ति तु माम भक्ता मैते तेषु चाप्यः, जो प्रेम और श्रद्धा के साथ मेरा भजन करते हैं वो मेरे हैं, मैतेषु वो मेरे हो जाते हैं। और ये यथा माम प्रपद्य वाला रूल तो फॉलो करना पड़ेगा ना, जब वो मेरे हो गए तो मुझे उनका होना पड़ता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता 9.29, अतः प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और सब तरह से शुद्ध भक्त बनना चाहिए। बस एक ही तरीका है भाव सागर को पार करने का, कि हमें भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना है बस। और आगे श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः मनुष्यों को सक्षम गुरु की से उसी प्रकार यह जानना चाहिए कि भक्ति करने से क्या क्या लाभ तथा हानि है, जिस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी से महाराजा परीक्षित ने पूछा है। अब भक्ति किस तरह से करनी है वो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु श्री रूप गोस्वामी का जो शास्त्र है उसके अनुसार बता रहे हैं। भक्त भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि शरीर तथा आत्मा के पोषण के लिए जितने भोजन की आवश्यकता हो उतना ही खाए। सबसे पहली विधि है भोजन, और भोजन जो है वो उतना ही खाना चाहिए जितना आवश्यक हो, ठूस के नहीं खाना चाहिए, और वो भी तब खाना चाहिए जो पहले भगवान को ऑफर किया जा सका। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मानव शरीर के निर्वाह के लिए दूध तथा शाकाहारी पर्याप्त है, अतः स्वाद की पूर्ति हेतु उसे अधिक कुछ खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भौतिक जगत में अपने को बड़ा दिखाने के लिए धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। ईमानदारी के साथ अपनी जीविका सुगमता से चलनी चाहिए, क्योंकि जोड़ तोड़ से समाज में बड़ा आदमी बनने की अपेक्षा ईमानदारी से कुल्ली बनकर रहना श्रेष्ठकर है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग की बात करते हैं, कि जितना जितना हम सहूलतों के पीछे, फैसिलिटीज के पीछे, धन के पीछे भागेंगे, उतना ही हम हाई जो थिंकिंग है हमारी, जहाँ पर हमें पहुँचना है उससे नीचे गिरते जाएंगे। फिर बस इन भौतिक वस्तुओं के चक्कर में ही फंसे रहेंगे। क्या सोचेंगे, हमें एसी चाहिए, हमें अच्छा बंगलो चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें इस तरह के ड्रेसेस चाहिए। तो जो कंटिन्यूस इन्हीं विषयों के विषय में सोचता रहेगा, उसे भला हाई थिंकिंग का कब समय मिलेगा, है ना? जो विषय वासनाओं की ओर सोचता रहेगा। जैसे एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं, अगर कोई मोबाइल खरीदता है तो पहले उसकी एक इच्छा होती है कि मुझे मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए। उसने मोबाइल खरीदा, अब उसको मोबाइल के लिए कवर चाहिए, उसको प्रोटेक्टर चाहिए, उसको मेमोरी कार्ड चाहिए, उसको चार्जर चाहिए, उसको मोबाइल रखने के लिए पर्स चाहिए। मतलब जो चीज आप खरीदोगे ना, उसके साथ साथ बहुत सारी विशेष पीछे आ रही होती है, हमें नहीं पता होता है, है ना? जिस तरह से एक घर चाहिए, एक घर मिल गया, उसके लिए फर्नीचर चाहिए, उसके लिए डेकोरेशन चाहिए, उसके लिए हर एक वस्तु है ना, लाइटिंग चाहिए, इलेक्ट्रिक, बहुत सारी चीजें, हमको फ्रिज चाहिए, एलसीडी चाहिए, एलईडी चाहिए, और एयर कंडीशनर चाहिए, कितनी सारी चीजें चाहिए होती है। तो एक ख्वाहिश के साथ साथ बहुत सारी ख्वाहिशात आती रहती है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि समाज में बड़ा आदमी बनने की अपेक्षा ईमानदारी से कुली बनना ज्यादा श्रेष्ठकर है। यदि कोई ईमानदारी के से विश्व का सबसे बड़ा धनी पुरुष बनता है तो कोई हर्ज नहीं, किन्तु केवल धन संग्रह के लिए जीविका कमाते समय ईमान बेचना उचित नहीं है। इस प्रकार का प्रयत्न भक्ति में बाधक बनता है। मनुष्य को ऊल उजलूल नहीं बनना चाहिए, यानी प्रलाप नहीं करना चाहिए। भक्त का कार्य तो भगवान की कृपा प्राप्त करना है, अतः भक्त को सदैव ईश्वर की अद्भुत सृष्टि के लिए उनकी महिमा का वर्णन करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी भक्त को क्या करना चाहिए उसके विषय में बता रहे हैं, कि भक्त का ये काम नहीं है कि सारा दिन धन संग्रह करने के लिए वो घूमता रहे, परेशान रहे। उसको तो भगवान ईश्वर की अद्भुत सृष्टि के लिए भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए। भक्त को ईश्वर की सृष्टि को यह कहकर नहीं नकारना चाहिए कि यह संसार झूठा है, असत्य है। यह संसार असत्य नहीं है, वस्तुतः हमें अपने पालन के लिए इस संसार से अनेक वस्तुएं ग्रहण करनी होती हैं। अतः हम यह कैसे कह सकते हैं कि यह संसार असत्य है, उसी प्रकार हम यह कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है। भला कोई निर्विशेष होकर समस्त बुद्धि तथा चेतना से किस प्रकार युक्त हो सकता है। अतः शुद्ध भक्त के जानने के लिए अनेक बातें हैं, और उन्हें शुकदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक महापुरुषों से सीखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी निष्कर्ष यह बताते हैं कि जीव तब तक आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता जब तक कि उसे एक शुद्ध प्रामाणिक गुरु की प्राप्ति नहीं हो जाती। क्योंकि जब तक गुरु प्राप्त नहीं होता तब तक तो हम मेंटल स्पेकुलेशंस करते रहेंगे, ये संसार असत्य है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, अगर संसार असत्य है तो हमें हमारे जीवन को निर्वाह करने के लिए बहुत सारी वस्तुओं के लिए संसार पर डिपेंडेंट होना पड़ता। संसार असत्य है मतलब हमारा अस्तित्व ही असत्य है। कोई बोलेंगे भगवान निर्विशेष है, यदि भगवान निर्विशेष है तो फिर श्रील प्रभुपाद जी बोलते फिर उनके पास समस्त बुद्धि और चेतना कहाँ से, उनके पास तो उनका तो शरीर नहीं, उनके पास तो बुद्धि नहीं, उनका तो सर नहीं, तो फिर वो ये सारे कार्य कैसे कर रहे हैं। भगवान का एक विशेष स्वरूप है, भगवान अपने उस विशेष स्वरूप में रहकर जीव के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते। लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब हम किसी शुद्ध वैष्णव का आश्रय ग्रहण करेंगे। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति में सेवा करने के लिए उपयुक्त परिस्थिति यही है कि ईश्वर की सेवा अत्यंत उत्साह के साथ की जाए। भगवान ने अपने श्री चैतन्य महाप्रभु स्वरूप में यह चाहा है कि सारे संसार के कोने कोने में भक्ति संप्रदाय का प्रचार किया जाए। अतः शुद्ध भक्त का परम कर्तव्य यह है कि जहाँ तक संभव हो वह इस आदेश को पूरा करे। प्रत्येक भक्त को न केवल दैनिक भक्ति अनुष्ठानों के प्रति उत्साह होना चाहिए अपितु भगवान चैतन्य के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए संप्रदाय का शांति पूर्वक प्रचार करना चाहिए। यदि उसे ऊपरी तौर पर इसमें सफलता नहीं मिलती तो उसे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात भक्त के लिए बहुत आवश्यक है वो बता रहे हैं कि भगवान ने स्वयं आकर चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में एक ही इच्छा प्रकट की है, क्या कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिधर तक तुम्हारी क्षमता है ना, पृथ्वी तेयात नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो पे मोर नाम, जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक जाकर भगवान के इस पवित्र नाम को बिखेरो, उसको स्प्रेड करो। और शुद्ध भक्त का कर्तव्य बन जाता है कि भगवान की इच्छा को पूरा करे, तो जहाँ तक संभव है उसे भगवान के आदि केवल अपने दैनिक भक्ति, बस मेरी 16 माला पूरी हो गई, बस मेरा मंगला आरती हो गया, संध्या आरती हो गया, बस मेरा काम खत्म, ऐसा नहीं। शिला प्रभुपाद जी बोलते दैनिक भक्ति के अनुष्ठानों के प्रति उत्साह होना चाहिए अपितु भगवान चैतन्य के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए संप्रदाय से शांतिपूर्वक प्रचार भी करना चाहिए। यदि उसको लगता है कि भाई मैं प्रचार कर रहा हूँ भक्त तो बन ही नहीं रहे हैं तो क्या फायदा है, इससे बेहतर बैठ के मैं अपनी साधना करूँ, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते यदि उसे ऊपरी तौर पर इसमें सफलता नहीं मिलती है तो भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। हमारा कर्तव्य है ना कि हम भगवान के आदेश और इच्छा को पूरा करें। और भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतमः, इस संसार में कोई भी उससे बड़ा मुझे प्यारा नहीं है। और भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भवि, और न ही कोई भविष्य में मुझे उससे ज्यादा प्यारा होगा। किससे ज्यादा प्यारा, जो मेरे इन शब्दों को, जो भगवत गीता को, मेरी लीलाओं को जो दूसरों को सुनाएगा, मेरे भक्तों तक पहुंचाएगा। ये इमं परमं गुह्यं मद भक्तेष्व विदास्यते भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वैशद्य संशयम्, जो ये परम ज्ञान को मेरे भक्तों को पहुंचाएगा वही मेरी परम भक्ति करता और निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगा। उससे ज्यादा प्यारा ना कोई मेरा है और ना ही कोई होगा। तो हम सबका कर्तव्य है ना कि हम भगवान के प्यारे बनने का प्रयास करें। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते भले सफलता नहीं दिखती है तो भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। शुद्ध भक्त के लिए सफलता असफलता का कोई अर्थ नहीं होता है क्योंकि वह युद्ध भूमि में सैनिक के समान होता है। भक्ति में सेवा की विचारधारा का प्रचार ठीक कुछ कुछ वैसा ही है जैसा कि भौतिक जीवन में जीवन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब आप भक्ति करते हो ना, भक्ति का क्या मतलब होता है, भौतिक जीवन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। और उसमें आप एक सैनिक की तरह हो। माया अपने ओर से अपने सारे हथियार चला रही है और सैनिक का क्या कर्तव्य है कि मुझे अपनी ओर से 100% देना है। युद्ध में विजय होती है या पराजय होती है उससे सैनिक को कुछ मिलना देना नहीं होता, और सैनिक तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य को पूरा करता है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर यही बता रहे हैं कि भक्ति सेवा की विचारधारा का ठीक प्रचार ठीक कुछ कुछ वैसा ही है जैसे भौतिक जीवन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना। भौतिकतावादी कई प्रकार के हैं, यथा सत्कामकर्मी, ज्ञानी, चमत्कारी, योगी इत्यादि, ऐसे और भी। वे सभी ईश्वर के अस्तित्व के विरोधी हैं। वे अपने को ही ईश्वर घोषित करते हैं, भले ही वे पग पग पर प्रत्येक कार्य के लिए ईश्वर की कृपा पर आश्रित क्यों न रहे। अतः शुद्ध भक्त को चाहिए कि इन नास्तिकों के ग्रहों का साथ न दे। भगवान का सबल भक्त अभक्तों के ऐसे नास्तिकवादी प्रचार से कभी गुमराह नहीं होता है, किंतु नव दीक्षित भक्त को इनसे बहुत सतर्क रहना चाहिए। भक्त को प्रमाणिक गुरु के पद प्रदर्शन में ठीक से भक्ति करनी चाहिए, मात्र औपचारिकताओं से नहीं चिपके रहना चाहिए। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी भक्त को क्या करना चाहिए उसके विषय में बता रहे हैं कि संसार में तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो पद पद पर हमें ये बताएंगे कि वो ही ईश्वर है, वो ही भगवान है, लेकिन एक शुद्ध भक्त को चाहिए कि इन नास्तिकों के ग्रहों का साथ नहीं ले। उसे क्या चाहिए कि वो अपने प्रमाणिक गुरु के आदेशों, गुरु साधु और शास्त्र के आदेशों के अनुसार कार्य करें। तो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो तो ऐसे नास्तिकवादी प्रचारों के कारण कभी भी गुमराह नहीं होता है, लेकिन जो नया नया हम जैसा कच्चा भक्त होता है तो उनको क्या करना चाहिए, प्रमाणिक गुरु के पद प्रश्नों में ठीक सीख भक्ति करनी चाहिए। सिर्फ औपचारिकताओं से चिपके नहीं रहना चाहिए, मतलब खाली बस मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, नहीं, उसको गुरु महाराज के आदेशों को श्रवण करना चाहिए। जैसे जैसे वो श्रवण करेगा गुरु के आश्रित रहकर, तो वो इतना प्रबल हो जाएगा कि वो ठीक क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, उसमें डिसीजन ले पाने के लिए सक्षम हो जाएगा। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में यह देखना चाहिए कि कितनी भक्तिमय सेवा की जा रही है, मात्र अनुष्ठान के संबंध में नहीं। भक्त को किसी वस्तु के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, वरना भगवान की इच्छा से जो प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी दो बातें बता रहे हैं। एक तो ये बता रहे हैं कि मात्र अनुष्ठान के संबंध में नहीं, जो हम कार्य कर रहे हैं, जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं, चाहे हम कोई उपवास रख रहे हैं, चाहे हम जप कर रहे हैं, चाहे हम विग्रह सेवा कर रहे हैं, क्या वो केवल मैकेनिकली अनुष्ठान है या कितना प्रेम और विश्वास है हमें अपनी भक्ति पर, है ना। हम नाम जप कर रहे हैं उसके अंदर हमारा कितना दृढ़ विश्वास है कि यही नाम जो है उसी के द्वारा मेरा कल्याण होगा। श्रद्धा का मतलब एक ही है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहीं सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत है। जब आप कृष्ण की भक्ति करते हो तो यदि ये सोचते हो कि बस मैं कृष्ण का भक्त हूँ, कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ, तो मुझे और कुछ किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण भक्त दूसरों को धिक्कारता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण भक्त दूसरों का अपमान करता है। कृष्ण भक्त का एक लक्षण है त्रणादपि सुनिश्चेना, वो तो अपने आप को राह में गिरे हुए तिनके से भी अधिक तृण मानता है, लेकिन वो भगवान को जानता है, सबका आदर करता है। अमानी न माना देना, याद रखिए भक्तों, ये बात बहुत सरल है। ये जो तीसरा श्लोक है ना शिक्षा अष्टकम का, वो कहना बहुत सरल है, और जिस दिन इसको जीवन में उतार दिया उस दिन और कुछ न सीखने के लिए रहा और न करने के लिए रहा। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, अमानी ना मान देना केवल हरे कृष्ण के भक्तों को नहीं। ये नहीं है कि हम हरे कृष्ण वाले के जो भक्त है हमारे सीनियर उनको मान देते हैं। भगवान तो कहते हैं कि अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणैवच, सबके साथ किसी के साथ द्वेष नहीं करना, सबके साथ मित्रता का भाव, सबको सम्मान देना, अमानी ना मान देना, प्रत्येक जीव को चाहे वो हरे कृष्ण डिवोटी हो, चाहे वो किसी देवी देवता का सम्मान करता हो या किसी दूसरे धर्म से रिलेटेड हो, हमारा कार्य क्या है, प्रत्येक जीव को सम्मान देना। क्या हम कर पाते हैं? अपने जो सीनियर है उनको भी, उनकी भी अवहेलना करने बैठ जाते हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत खास बात बता रहे हैं कि ये देखना ये चाहिए कि कितनी भक्तिमय सेवा हो रही है, और मात्र अनुष्ठान के संबंध नहीं, बस मेरी 16 माला पूरी हो रही है, मेरी मंगला संध्या हो रही है, बस मैं बहुत अच्छा भक्त बन गया। हमारे अंदर भक्त की क्वालिटीज होनी चाहिए। और क्या क्वालिटी है भक्त की? यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च, जो किसी के द्वारा विचलित नहीं होता और ना ही कोई उसके द्वारा विचलित होता है। हम किसी के डिस्टरबेंस का कारण बनते ना, तब तक हम भक्त कहलाने के योग्य नहीं है। या किसी के कारण यदि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारी भक्ति डिस्टर्ब हो रही है, तो भी नहीं। भक्त कभी अनुकूल वातावरण, अनुकूल परिस्थिति या अनुकूल एनवायरमेंट का वेट नहीं करता। भक्त तो भगवान को हर परिस्थिति में यही कहता है, थैंक यू कृष्ण फॉर नाउ एज इट इज। जैसी भी सर्कमटेंसेस है, जैसा भी एनवायरमेंट है, जैसा भी स्थिति है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो भक्ति है ना, केवल नाम के लिए भक्ति है? ये तो भक्त जब भक्ति करने आता है ना, तो भगवान भी परेशान हो जाते हैं कि इस भक्ति के बदले में मैं उसको क्या दूं। तो भक्त के अंदर जो गुण है, जो क्वालिटीज है, वो तो अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी ना। हम तो जरा जरा सी बात पर विचलित हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि भक्त को किसी वस्तु के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, वरना भगवान की इच्छा से जो प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट होना चाहिए। संतुष्ट सततम योगी यतात्मान दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समी प्रिय। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान का प्यारा बनना होगा तो उसके लिए अपनी इच्छाएं भगवान पर थोपने के लिए मत जाया करो। भगवान की इच्छा पर संतुष्ट रहना है, भगवान की इच्छा को दुखी दिल से स्वीकार करना नहीं, बल्कि संतुष्ट रहना, आनंदित रहना, भक्तिमय जीवन का यही सिद्धांत होना चाहिए। ऐसा सभी सिद्धांत सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु के निर्देशन में सरलता से सीखे जा सकते हैं। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से ठीक ही पूछा और मनुष्य को उनके इस उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, महाराज परीक्षित ने संसार की उत्पत्ति पालन तथा संहार, वैदिक अनुष्ठानों की विधि तथा पुराणों एवं महाभारत जैसे वेदों में वर्णित पवित्र कार्य के करने की विधि के विषय में पूछा, जैसा कि पहले व्याख्या की जा चुकी है। महाभारत प्राचीन भारत का इतिहास है और पुराण भी वैसे ही है। पुण्य कर्मों का उल्लेख उपनिषदों यानी स्मृतियों में हुआ है और इनमें सामान्य जनता के जल उपलब्ध कराने के लिए तालाब तथा कुएं खुदवाने जैसे कार्य सम्मिलित हैं। सड़कों के किनारे वृक्ष लगाना, मंदिर तथा ईश्वर के पूजा स्थलों को बनवाना, निर्धनों को अन्न देने के लिए दान केंद्र खोलना तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य पूर्त कहलाते हैं। यहाँ पूर्त जो पूछा है ना कि भाई पवित्र कार्य कौन से होते, इष्टा पूर्त से कामयाना, वो पवित्र कार्य यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भाई कौन कौन से हैं। के साधारण लोगों को किस तरह से, जो दुखी हैं उनको किस तरह से फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, है ना, रास्ते में पानी के कुएं खुदवाना, वाटर डिस्पेंसर्स लगवाना, या फिर वाटर फिल्टर लगवाना, या फिर ना निर्धन जो हैं जो अनाज वगैरह नहीं है उनको दान देना, और किस तरह से लोगों को ऐसी सुविधाएं देना जिससे वो अपने जीवन में आगे बढ़कर अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ सके। तो यहाँ ये सारे पवित्र कार्य, इसी प्रकार राजा ने सभी के लाभ और इंद्रिय तुष्टि के लिए प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति की विधि के विषय में जानने की भी जिज्ञासा प्रकट की। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं कि एक भक्त को हर एक चीज का ज्ञान होना चाहिए, और जब सारी चीजों का ज्ञान होने के बाद उससे ये पता चलता है कि भले कुछ भी मिल जाता है लेकिन यदि जीव के पास कृष्ण भक्ति नहीं है तो वो संतुष्ट नहीं रह सकता, और भले संसार में उसके पास कुछ भी नहीं हो, दरिद्र हो, खाने के लिए भी कुछ ना हो, पहनने उड़ने के लिए, लेकिन यदि वो भगवान का भक्त है तो वो संतुष्ट रहता है। तो उसको फिर ये पता चलता है कि कितनी महत्वपूर्ण चीज है जो हमें मिली है, है ना। तो ये भक्ति जो है उसके द्वारा जीव आनंदित रहता है, और जीव का एक ही लक्ष्य, एक ही चीज चाहता है, वो सारी फैसिलिटीज से भी तो आनंद ही चाहता है, लेकिन यदि वो अंदर से बीमार है, रोगी है, फिर भले उसको कितना ही सुंदर घर प्राप्त हो, भले कितने सुंदर भोजन प्राप्त हो, यदि वो स्वयं बीमार है तो उनका आनंद नहीं ले सकता, लेकिन यदि वो स्वस्थ है, अंदर से आनंदित है, कृष्ण भक्ति का प्रकाश यदि हृदय में है तो संसार में चाहे कुछ मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब कोई भगवान की शरण में आता है तो भगवान उसकी पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं, और जब भगवान उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं फिर भवता यत् दर्शनम यत्सात् अपुनर्भव दर्शनम, जिसको एक बार भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो क्या उसके जीवन में कोई दुख रह सकता है। तो इन सब चीजों को हम बहुत सुंदर रीति से आगे सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, जीवन में कृष्ण की भक्ति को, कृष्ण प्रेम को और भक्तों के लक्षण को उतारने का प्रयास करेंगे। केवल अनुष्ठान नहीं, हमें भक्त बनना है और भक्त की क्वालिटीज को अपने अंदर डिवेलप करना है, धीरे 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 इन भौतिक वस्तुओं से आसक्ति समाप्त करके कृष्ण के चरणों में आसक्ति को बढ़ाना है, और अपने अंदर जो ये काम वासना है, जो दुर्गंध है, उसको समाप्त करना है। हृदय तो पवित्र होगा तभी तो कृष्ण आके उसमें विराजमान होंगे। तो आप सब मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना केवल अनुष्ठान समझ करना बल्कि प्रेममयी भक्ति के साथ कर सकूं, ताकि मेरा हृदय पवित्र हो और मैं जो शिक्षा दूं उस पर दूसरे लोग भी, क्योंकि मैं यदि नहीं उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारूंगी तो भला क्या असर करेंगी ये शिक्षाएं। तो कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।